15 नंबर के रजिस्टर में 105 पेज पर 8/2/88 का तहत एक क्लास रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। कौन पूछते हैं? रूहानी बाप। ये जिस्मानी बाप नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि जिस्मानी बाप तो खुद ही भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आत्मा के स्वधर्म में टिकना भूल जाते हैं, इसलिए वो नहीं पूछ सकते। तो सुप्रीम सोल पूछते हैं। ये तो जानते हो एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, क्योंकि परम पिता है ना। परम पिता माना परमात्मा। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। परम माना बड़े से बड़ा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट माना सबसे अच्छा, जिससे अच्छा कोई वो नहीं। तो ऐसे ही परम, तो उससे बड़ा पिता कोई होता नहीं। तो परम पिता और परम आत्मा, जिससे ज्यादा पावरफुल आत्मा कोई होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुम सब नहीं सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। फिर किन आंखों से देखा जाता है? ज्ञान चक्षु से हम आत्मा के एक्ट के आधार पर आत्मा को परख सकते हैं। आत्मा की वाचा के आधार पर आत्मा के पार्ट को या परमात्मा पार्ट को परख सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा इन आंखों से। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार। ऐसे नहीं सबको देखने में आ जाएगी, सबको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। भक्ति मार्ग में बिना आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता है। ये दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हो। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। नौ धा, धा माना प्रकार, नौ प्रकार की भक्ति। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। बैकुंठ तो उस समय नहीं था, क्योंकि मीरा को 500-600 वर्ष हुए हैं, कलयुग के मध्य की बात है, तुलसीदास सूरदास के समय की। तो मीरा डांस करती थी, लेकिन उस समय बैकुंठ था ही नहीं। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ है, जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लीन हो जाते हैं।
बल दीदार होगा हनुमान या गणेश का, परंतु उसे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तो बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहां शिव का लिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते हैं कोई बड़ा बनाते हैं, क्या शिवलिंग। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही वह सुप्रीम आत्मा है, छोटे बड़े होने की बात नहीं है। जैसे हम आत्मा है बिंदु, वैसे परमात्मा भी बिंदु। फिर भक्ति मार्ग में कोई छोटा कोई बड़ा क्यों बनाते हैं, जब आत्माएं सब एक जैसी हैं, तो बड़ा छोटा बनाने का कारण क्या है? ज्ञान के आधार पर क्या कि किसी ने तो उसके बड़े पार्ट को समझा, तो उसको चित्रित कैसे किया जाए, तो उन्होंने बड़ा रूप बना दिया, और कोई ने उसे पूरे पार्ट को नहीं समझा, थोड़ा समझा, तो उन्होंने छोटा बनाया। बाकी आत्मा तो एक जैसी होती है। तुम 5000 साल पार्ट बजाती ज्यादा से ज्यादा, और परमात्मा सिर्फ संगम युग में पार्ट बजाता, तो परमात्मा सबसे जास्ती पार्ट कैसे बजाता? वो इस तरह बजाता कि परम आत्मा भले संगम युग में ही आता है, सारे कल्प में उसका पार्ट नहीं है, लेकिन पार्ट तो साकार सृष्टि पर साकार रूप से ही बजाया जाता है ना। तो वो जो साकार रूप से पार्ट बजाता है वो इतना सशक्त पार्ट है, जिसको कहते हैं क्या क्या टाइटल देते हैं, सर्वशक्तिवान। तो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा इतना शक्तिशाली पार्ट बजाता है जितना दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र पार्ट नहीं बजा सकता। और पार्ट तो कर्मेंद्रियों से ही बजाया जाता है, या हवा में सूक्ष्म मत में बजाया जाएगा, पार्ट तो कर्मेंद्रियों से ही बजता है। तो परमात्मा जितना पार्ट बजाता है उतना और कोई पार्ट मनुष्य आत्मा नहीं बजा सकती। तो आत्मा का साइज तो एक ही है, कोई बड़ा बनाते हैं कोई छोटा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो सुप्रीम आत्मा है। कहते भी हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा है सब भाई भाई है, बेहद का बाप एक है, बाकी तो सब भाई भाई पार्ट बजाते हैं। ये समझने की बातें हैं कि आत्मा भाई भाई जो बच्चे हैं वो क्या पार्ट बजाएंगे, और परमात्मा बाप वो क्या पार्ट बजाएगा। ज्ञान की ये बातें हैं जो एक बाप ही समझाते हैं, और जिनों को समझाते हैं वो फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले तो एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए फिर सर्वव्यापी कह देते, किन्हीं के लिए जो एक ही है अनेक नहीं है। सर्वव्यापी हो तो अनेक रूप हो गए, और एक व्यापी हो तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। फिर उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है ठिक्कर भित्तर में, ये तो राइट नहीं है। सुप्रीम सोल, इतना ऊंचा पार्ट बजाने वाली सोल, तो वो आधार भी कैसा लेगा, ठिक्कर भित्तर का, ठिक्कर बुद्धियों का आधार नहीं ले सकता। ठिक्कर माना जैसे मिट्टी का ढेला, ठोकर लगे और टूट जाता है। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, ऐसों में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। भीतर बुद्धि भीत माने दीवाल, जो ज्ञान मार्ग में विघ्न की दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते और न दूसरों को आगे बढ़ने देते। तो ऐसे विघ्न पैदा करने वालों में भी परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। तो ये बात राइट नहीं है कि ठिकर भीतर में परमात्मा है। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? आएंगे इसका मतलब आने से पहले नहीं था ना। ऐसे थोड़ी कहते आप सर्वव्यापी हो, कहते हैं आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे। बारी जाना माना बलिहार जाना, संपूर्ण अर्पण होना, तन से मन से धन से समय से संपर्क से सब प्रकार के संबंधों से परमात्मा के प्रति स्वाहा हो जाना। बारी जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना, आएंगे तभी तो बारी जाएंगे, तो आने से पहले नहीं हुआ। कहते हैं आप तो आप ही मेरे एक दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। जिसके लिए कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं कि वो एक कौन है। बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये जो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुपाल, उसका हिसाब भी समझाया जाता है। क्या हिसाब हुआ? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुपाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल माना बिचौलिया। तो आत्मा परमात्मा के बीच में बिचौलिया कौन हुआ, दलाल कौन हुआ, एजेंट? प्रजापिता ब्रह्म। तो जब सतगुरु के रूप में मिलता है वो हुआ दलाल, सतगुरु के रूप में मिलता है जरूर बिचौलिया हुआ। और जो बिचौलिया होता है वो जरूर साकार होगा, क्योंकि हम क्या हैं? हम निराकार सिर्फ आत्मा हैं या साकार हैं? हम तो साकार हैं। तो जब वर्षा लेने वाले बच्चे साकार हैं तो बिचौलिया भी साकार होगा। इसलिए सिख लोग भी गायन करते हैं क्या, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त माना जिसको कोई काल खा नहीं सकता, और मूर्त अमूर्त माना निराकार जिसकी मूर्ति न हो, और मूर्त माना साकार। तो सतगुरु का रूप साकार रूप होता है, है तो निराकारी स्टेज वाला लेकिन साकार शरीरधारी होता है, क्योंकि दलाल के रूप में होता है। तो आप बाप के पास आए हो राजयोग सीखने के लिए, बाप तो सर्वेंट है, है? ऐसे कोई कहता है कि गुरु सर्वेंट है, है? गुरु के लिए कोई नहीं कहेंगे कि गुरु हमारा दास दास ही है। गुरु के लिए तो बहुत ऊंची दृष्टि रखेंगे, माँ बाप के लिए तो फिर भी कह सकते हैं कि माँ बाप दास दासी होते हैं क्योंकि टट्टी पेशाब साफ करते हैं। लेकिन गुरु के लिए ऐसा शब्द कभी नहीं कहेंगे। तो बाप के रूप में तो सर्वेंट है, लेकिन गुरु के रूप में सर्वेंट सर्वेंट नहीं है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप पहले हमारे सामने जब आता है हमको पता नहीं चलता है कि बाप आया हुआ है, क्योंकि बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जन्म देने के निमित्त जब बाप बनता है पहली पहली बार, तो बच्चों को क्या पता। तो काम तो बहुत बड़ा किया, बीज बोने का। तो नीचे लिखते हैं बड़े आदमी, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप तो सब बच्चों का सर्वेंट है। क्या बाप के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका वो सर्वेंट न बनता हो। कहते हैं बच्चे हम तुम्हारा सर्वेंट हूं। तुम कितनी उज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन तो होते ही हैं पावन दुनिया में, इस दुनिया में तो कोई पावन हो नहीं सकता। तो ये समझने की बातें हैं। क्या समझने की बात हुई कि परमात्मा बाप जब आते हैं तो बाप के रूप में सर्वेंट बनते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाकी तो सब कनरस की बातें हैं। कान का रस, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा बोला। यह है गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इसका एम ऑब्जेक्ट क्या है? पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको मनुष्य से यह देवता बनना है, और जिनको निश्चय नहीं होगा क्या कि हम इस जन्म में जाने मनुष्य से देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो जिनको निश्चय नहीं होगा वो इस स्कूल में बैठेंगे भी, बैठेंगे भी नहीं। बैठेंगे कौन? जिनको ये निश्चय होगा, डॉक्टर पढ़ने वाला हो, डॉक्टरी पढ़ने के लिए स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। तो अगर उसको ये निश्चय ही नहीं हो, कोई ये संशय पैदा हो जाए, पता नहीं डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चलो प्राइवेट डॉक्टर ही सही, पता नहीं दुकान खोल पाई ना खोल पाई, तो पढ़ेगा क्या था? फिर वो पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ भी पूरी पढ़ाई वो ही पढ़ सकते हैं जिनकी बुद्धि में ये पक्का निश्चय है कि हमको इसी जन्म में नर से नारायण जैसा बनना है, नहीं तो पढ़ाई पढ़ेंगे ही। निश्चय होगा तो बैरिस्टर से या सर्जन से वकालत या डॉक्टरी सीखेगा, और नहीं तो भाग जाएगा। एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो आएगा नहीं। तो ये कहां की बात हुई है? ये सिर्फ लौकिक दुनिया का मिसाल ही दिया क्या? अलौकिक दुनिया में भी ये बात लागू होती है। यहाँ भी ऐसे बहुत से ब्राह्मण बच्चे हैं जो पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन निश्चय उनको नहीं है कि हम इस जन्म में मनुष्य से देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये निश्चय नहीं। और जिनको निश्चय नहीं है वो पूरी पढ़ाई पढ़ते भी नहीं, बीच में अधूरी पढ़ाई छोड़ करके चले जाएंगे या चले जाते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता नर से नारायण बनते हैं? तो जब समझते हो तो बाप से पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हो। एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये है सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा। ये कथा सच्ची सच्ची क्यों है? क्योंकि इसमें सच्चा सच्चा नरसिंह नारायण बनाया जाता है। बात सिर्फ कथा सुनाते हैं पंडित जी, कथा पे लिखा हुआ है चौपड़ी पर सत्यनारायण की कथा। और कथा किसकी है? लीलावती लकड़ा हारा लकड़ बग्घा। लेकिन जब सच्ची कथा ही नहीं है तो पढ़ाई तो सच्ची है ही नहीं। जब सच्ची पढ़ाई नहीं है, डुप्लीकेट पढ़ाई है, तो थोड़े समय के लिए मान मर्तबा लेने वाले तो बन सकते हैं, बाकी सत्य नरसिंह नारायण नहीं बन सकते। इसको कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। भक्ति मार्ग में पास्ट की कथाएं सुनाते हैं, और यहां कोई पास्ट की कथाएं नहीं सुनाएंगे कि ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। सिंध हैदराबाद में ऐसे होता था, कराची में वैसे होता था, अब क्या होता है? तो कथा सुनाने की बात तो भक्ति मार्ग की है, और यहां तो हमको प्रैक्टिकल बनना है। तो पास्ट को कथा कह देते हैं। ये सच्ची सच्ची शिक्षा नरसिंह नारायण बनने की नई दुनिया में देवताएं बनेंगे तो, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो मनुष्य रहते हैं, और देवताओं में जो दैवी गुण हैं वो मनुष्यों में है नहीं। मनुष्यों को कहा जाता है जो देवता, हाँ, मनुष्यों को कहा जाता है जो भूल करते हैं, जो अभूल हो जाते हैं वो देवता है। तो मनुष्य उनको देवताएं कहते हैं, और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सर्वपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। निर्विकारी अपने को नहीं कहते, अपने को कहते हम सभी पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं, और देवताओं को कहते आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक वगैरह वगैरह। तो देवताओं को जरूर कहेंगे कि वो सतयुग में थे, झूठ युग में नहीं थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कलयुग में थे, कलह कलेश वाले युग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है, श्री श्री नारायण। नारायण को भी टाइटल लेते हैं और श्री श्री बाप का भी टाइटल है, लेकिन मनुष्य आज अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहलाने लग पड़ते हैं, अथवा ऐसी वाचा बोलते हैं जिससे ये साबित हो कि यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो अलग है, लेकिन उनको बनाने वाले बाप की महिमा अलग है। देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण वगैरह वगैरह आता है, लेकिन परमात्मा की महिमा में ये शब्द नहीं आवेंगे। क्यों? किंतु परमात्मा अगर सर्वगुण संपन्न बन जाए तो उस दुनिया में जो गुणहीन है या अवगुणों को धारण करने वाले हैं उनका सफाया करने वाला कोई नहीं हो सकता। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। हद के सन्यासी क्या करते हैं? त्याग तो करेंगे, लेकिन घर घाट का त्याग कर सकते हैं, लेकिन विकारों का त्याग नहीं कर सकते। तो बेहद का सन्यासी वो कहा जाए
जो देह सहित देह के सर्व संबंधों से किनारा कर दे, न्यारा और प्यारा अपना जीवन बना दे। वो लोग कहते हैं आपने हमने घर बार आदि छोड़ा है, कौन कहते हैं? सन्यासियों को इस बात का घमंड होता है कि हमने त्याग किया है, तब हम ऐसी गद्दी पर बैठे हैं जो हमारी पूजा हो रही है। परंतु आजकल तो देखो ये लखपति बने बैठे हैं क्या? चलो तुमने त्याग किया होगा तब किया होगा, तुम तो पास्ट की बात उस कथा बैठ करके सुनाए रहे हो, अब क्या स्टेज है? तो जब त्याग किया तो त्याग का भाग्य तुमको अभी मिल गया, लेकिन अब लखपति बने बैठे हैं। लखपति तो उस समय की बात है, उस समय लखपति बड़ा माना जाता था, और अब तो करोड़पति बैठ गए थे। यहाँ बाप और बाप के बच्चों में एक भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ करोड़पति हो। करोड़पति माने करोड़ पूंजी का मालिक, उनके तो करोड़ों रुपया बैंक में पड़े हुए हैं। तो संन्यास माना सुख का त्याग करना, क्या सुख के जितने भी साधन हैं उनको त्याग करने वाले को सन्यासी कहा जाएगा, और सुख के साधनों को अपनाता चला जाए तो उसको सन्यासी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, क्योंकि समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस पुरानी दुनिया के जो अल्पकाल के सुख हैं, जो खत्म होने वाली चीज है, वो हम क्यों धारण करें? हम कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट में, मान लो टैप रिकॉर्डर ही लेने जाते हैं, और दिखाने वाला दिखा रहा है कि देखो ये बहुत अच्छा है, फिर दूसरा भी दिखाता है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक में ये बताया कि ये जल्दी खराब हो सकता है, और दूसरा टैप रिकॉर्डर बहुत लंबे समय, इसकी मशीनरी बहुत मजबूत है, तो लेने वाला क्या करेगा? अल्पकाल की चीज पंप एंड शो वाली भल हो, लेकिन वो तो मजबूत लेना पसंद करेगा। तो तुम बच्चे बेहद का संन्यास करते हो, बेहद का संन्यास मना ये जो अल्पकाल का सुख देने वाली दुनिया है इसको बुद्धि से छोड़ देते, समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए, पहले तो घर बार छोड़ा और अब अंदर कहाँ, शहरों में घुस पड़े, पहले जंगल में रहते थे और अब शहरों में घुस पड़े हैं, क्योंकि शहरों में से पैसा मिलेगा। गांव देहात में अगर घुसे तो पैसा तो मिलेगा नहीं, गांव देहात के लोग तो गरीब होते चले जा रहे हैं और शहरों के लोग रईस होते चले जा रहे हैं। तो अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं आदि में वो नहीं रहते, पहले कहाँ रहते थे? पहले पहाड़ियों में रहते थे एकांत में, और अब नहीं रहते। पहले कुटियाँ बनाते थे, अभी तो देखो कुटियाँ बनाते हैं तो भी कितना खर्चा करते हैं, हैं? पहले तो घास फूस की कुटिया बनाते थे उसमें रहते थे, और अब हाँ ब्रह्मा बाबा की जो कुटिया थी उसमें कितना खर्चा आया था, कब ब्रह्मा बाबा के समय में, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय उसने उनकी कुटिया कुटिया बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, घास फूस की कुटिया किधर क्या खर्चा होगा, कुछ भी नहीं। और अब वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, अभी तो बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं, आजकल तो सब तमो प्रधान हो गए, अभी तो है ही कलयुग। पृथ्वी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता है, कब नाम निशान कब गुम हो जाता, अगर आज देवताओं के चित्र न होते तो उनका नाम निशान भी गुम हो जाता। ये शास्त्र वगैरह जिनमें इतनी देवताओं की महिमा है, ये पहले तैयार नहीं होते, पहले क्या चीज तैयार होती है, जो स्वर्ग के देवी देवताएं थे उनकी स्मृति के आधार पर चित्र बनाते हैं, पहले पहले शास्त्र नहीं बनाते, और चित्रों के आधार पर फिर ये शास्त्र बनाए गए। तो अगर ये चित्र ना बनाए गए होते, क्योंकि स्वर्ग में भी चित्रकारी तो होती है लेकिन शास्त्र नहीं होते, तो चित्रकारी का वो हुनर द्वापर के आदि में भी होता है, तो देवताओं के चित्र होने के कारण आज उनकी इतनी महिमा हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। तो अगर वो चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान भी हमारी बुद्धि में से गुम हो जाता है। तुमको समझाया जाता है मनुष्य से देवता बनना है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी यही बात है, चित्र को देखने से चरित्र याद आता है। अगर ब्रह्मा का चित्र ही उड़ाई दिया गया होता, न बनाया गया होता, तो उनकी यादगार मात्र भी अब खलास हो गई होती, क्योंकि चरित्र याद ही नहीं आता। फिर तो बताया तुमको अब मनुष्य से देवता बनना है, आधा कल तो भक्ति मार्ग की कथाएं की सुन करके सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, फिर 5-4 वर्ष के बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, इसको ऐसे नहीं कहना है कि भक्ति छोड़ो, क्यों, जब भक्ति अंधश्रद्धा का मार्ग है, अज्ञानता का मार्ग है, अंधेरे का रास्ता है, तो भक्ति छोड़ने के लिए कभी किसी को नहीं कहना है। ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति आते ही छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं, अब देह के बाप से हमको वर्षा लेना है, पहले देह के बाप की पहचान चाहिए, पहचान नहीं है तो जैसे अंधश्रद्धा है, और पहचान है तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तो वो निश्चय अगर हो जाए, बेहद की बाप का पहचान, तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। हद के बाप से बुद्धि किसकी नहीं निकलेगी, हद के संबंधियों की बुद्धि क्यों बनी रहती है, जरूर बाप का पूरा परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है, तो हद का बाप हद के संबंधी याद आते रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा, अगर निश्चय हो जाए। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों को याद न करे, वो होती है जिस्मानी यात्रा जिसमें देहधारियों को याद करते हैं, यानी
देह अभिमान में रहने वालों को याद किया जाता है वो होगी जिस्मानी यात्रा और ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम खुद भी रूहानी स्टेज में रहते हो और याद भी किसको करते हो? रूहानी बाप को। तो इसमें कोई धक्का खाने की बात नहीं है। वहां तो देहधारी गुरुओं के, पंडों के, पुजारियों के, जड़ मंदिरों के धक्के खाते रहते हैं। उन जड़ मंदिरों में कोई परमात्मा तो बैठा हुआ होता? होता नहीं। ट्रांसलाइट के या कागज के या पत्थर के जड़ चित्र होते हैं लेकिन चैतन्य में परमात्मा नहीं होता। तो यहां कोई धक्का खाने की बात नहीं। भक्ति मार्ग है राख क्योंकि वहां अंधश्रद्धा है तो धक्का खाना पड़ता है। यहां धक्के की कोई बात नहीं। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। क्या कहा? भक्ति मार्ग में कृष्ण की भक्ति चलते फिरते कृष्ण की याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वो चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? कोई धक्का खाने की जरूरत है क्या? है? एक बार जो चीज देख ली, इन आंखों से पहचान लिया कि इस तरह एक रूप में परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। वास्तव में परमात्मा बाप कोई सर्वव्यापी नहीं है। जैसे गुरु लोग कहते हैं हमें परमात्मा ने ये टचिंग दी, परमात्मा ने हमको ये डायरेक्शन दिया, तो परमात्मा कोई सर्वव्यापी होकर के डायरेक्शन नहीं देता। तो एक बार अगर ये जान लिया कि बाप आया हुआ है तो घर बैठे भी याद कर सकते हो। ये नई बात है। भक्ति मार्ग में क्या बताते हैं? भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे क्या? ये नहीं कहेंगे कि तुम घर बैठ जाओ। और तो धक्के खिलाते हैं, धक्के खाने का रास्ता बताते हैं और बाप कहते हैं तुम एक बार मिलो और फिर बल फिर घर भर विलायत में चले जाओ और याद करते रहो। कृष्ण को याद करना वो तो पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वो बाप ही ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है मनुष्य से देवता बनाने की। ये नॉलेज और किसी में नहीं है। क्या? मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज किसी में नहीं है। क्यों? ब्रह्मा में नहीं है क्या? ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्राह्मण बने लेकिन मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज उनमें भी नहीं थी। अगर होती तो जिस समय ये वाक्य बोला कि लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब हुआ, तो बुद्धि में आ जाता कि 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म कैसे होगा, वो तरीका क्या होगा, किस स्टेज की बात की है, तो वो उनकी बुद्धि में नहीं आया। तो मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज है बाप के अलावा और किसी में नहीं। बाप कहते हैं रोज रोज को ये बातें सुनाता हूं। कब तक? जब तक तुम मनुष्य से देवता नहीं बने हो तब तक, जब तक जी रहे हो पुरानी दुनिया में तब तक मैं सुनाता रहूंगा। जब तक जीना है तब तक पीना है, और जब जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं मरने के बाद? भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता, तो वो तो स्थूल मरने को कहते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ जो जीते जी मरते हैं अर्थात बाप के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं, कोई परवाह नहीं करते, तो ऐसे श्रीमत पर चलने वाले बच्चे वो जीते जी मरे हुए स्टेज पर होने के कारण वो इस दुनिया में रहते हुए भी सुख की दुनिया का अनुभव करते हैं, दुख की दुनिया उनकी बुद्धि से निकल जाती है। तो मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी हैं चमकता है जब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो ना आंखों से देखने में नहीं आती है, कहा जाता आत्मा निकल गई जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते हैं? अभी हम आत्मा अपवित्र बने, पहले तुम आत्मा पवित्र थे, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, और अभी अभी कलयुग में गृहस्थ धर्म अपवित्र है, अब दोनों ही अपवित्र बने। दोनों माने कौन है? लक्ष्मी और नारायण बनने वाले जो भी हैं वो भी इस समय क्या हैं? अपवित्र हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं क्या? अगर एक पवित्र है और एक अपवित्र है तो भी पूजा पूजा नहीं होगी, क्योंकि पता कैसे चलेगा? इसका प्रूफ क्या हुआ कि पवित्र हैं या अपवित्र हैं? पवित्रता का प्रूफ क्या? परमात्मा को एवर प्योर क्यों कहते हैं? कोई प्रूफ के बिना प्रूफ के? अव्यक्त बाप दादा तो कहते हैं बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो परमात्मा एवर प्योर है वो कैसे कहा जाए? लक्ष्मी नारायण प्योर हैं ये क्या प्रूफ हो? तो चित्र बने हुए हैं यादगार, कहा?
जगन्नाथ मंदिर में,
कोणार्क के सूर्य मंदिर में,
देखने में वो चित्र गंदे नजर आते हैं, लेकिन जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, ज्ञान की दृष्टि मिली हुई है, वो समझते हैं कि ये गंदे नहीं है। तो भावना होती है, एम ऑब्जेक्ट होता है कोई कर्म में, कर्म भले कोई भी करो लेकिन अगर बाप की याद है तो वो कर्म भी क्या हो जाता है? सुकर्म हो जाता है। तो बाप की याद में किए हुए कर्म और वो कर्म इंद्रियां मंदिरों में देवताओं की आज भी पूजी जाती है। तो अभी लक्ष्मी नारायण दोनों अपवित्र हैं और सत्युग में दोनों पवित्र होते हैं, तो जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं, और दोनों में से एक पवित्र हो और एक अपवित्र हो तो उनकी पूजा पूजा नहीं हो सकती। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं वो दोनों पवित्र, यहां दोनों अपवित्र। यह मैंने कहा इस दुनिया में दोनों अपवित्र हैं और वहां सतयुगी संगठन में दोनों पवित्र होंगे, तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं, पहले तुम आत्मा आप ही पवित्र और पूजी थी, फिर आप ही पुजारी और पवित्र बनी हो, चौरासी जन्म लिए, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो कि कौन कौन राज्य करते थे, कैसे कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है, तुम अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पहले तो पत्थर बुद्धि थे, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज ही नहीं थी कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। रचयिता किसे समझते थे? रचयिता समझते सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु रचयिता है, और रचना समझते थे कि ब्रह्म रचना है। तो रचयिता अगर साकार होगा तो रचना भी साकार होगी, और रचना अगर साकार है तो ये थोड़े ही कहेंगे कि रचयिता निराकार है। निराकार इसलिए एक मुरली में बोला है, पूछा है, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? तो निराकारी वर्षा तो है ज्ञान रत्नों का, निराकार से निराकारी ज्ञान रत्नों का वर्षा तो मिल सकता है, लेकिन विश्व की बादशाही का साकार वर्षा नहीं मिल सकता है। तो हम रचना और रचयिता कौन है ये नहीं जानते थे, अब हम जानते हैं कि फर्स्ट क्लास रचयिता कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन है। नास्तिक थे क्योंकि जानते नहीं थे रचयिता और रचना के स्वरूप को। अभी तुम आस्तिक बने हो, तुम्हारे आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तो तुम बच्चे यहाँ आए ही हो ये देवता बनने के लिए, इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान हो तो भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती क्योंकि तुम भाई बहन हो, तो इस समय इस बात में मेहनत करनी पड़ती है। पूरी मेहनत किस बात की है, है? भाई बहन की दृष्टि बन जाए, पक्की हो जाए, आंखें ही सबसे जाती क्रिमिनल होती है। तो सबसे जास्ती कौन सा अंग कंट्रोल करना है? आंख कंट्रोल करना है। आंख से किसी की भी स्थिरियम दृष्टि का वृत्ति का पता लग सकता है, क्योंकि वृत्ति तो देखने में नहीं आती, दृष्टि तो देखने में आती। वृत्ति का पता लगाने के लिए दृष्टि को देखना होता है। दृष्टि में अगर चंचलता है तो वृत्ति में चंचलता जरूर होगी, वाइब्रेशन चंचल जरूर होंगे, और जिसके वाइब्रेशन चंचल होंगे वो फिर मनसा सेवा नहीं कर सकता। आधा कल्प ये आंखें क्रिमिनल रही है, आधा कल्प सिविल बनेंगी। सत्युग में देवताओं की आंखें सिविल होती है और यहाँ क्रिमिनल रहती है। तो इस पर सूरदास की कथा बैठ करके सुनाते हैं, क्या कि सूरदास ने अपनी आंखें ओढ़ ली कि हम दुनिया को देखेंगे ही नहीं तो याद कैसे आएगी, हम किसको देखें, हम अपने भगवान को देखेंगे, इस दुनिया को इन आंखों से नहीं देखें। क्योंकि ये आंख की ये विशेषता है कि आंख जिसको देखती है वो याद जरूरता। देवताओं के चित्र बनाए गए मंदिरों में या ब्रह्मा सरस्वती के चित्र बनाए गए, किस लिए बनाए गए, उनका एम ऑब्जेक्ट क्या बनाने का, चित्रों के बनाने का एम ऑब्जेक्ट होता ही है दर्शनार्थ। दर्शन करने के लिए, और दर्शन किस लिए? स्मरणार्थ, याद करने के लिए। और महिमार्थ, जब याद करेंगे तो उनकी महिमा भी करेंगे। तो ये तीन मापदंड हैं चित्र बनाने के। तो आधा कल्पी ये आंखें से मिल रही है और यहाँ क्रिमिनल रहती है, तो बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं तो बांधा हुआ हूँ पतित शरीर और पतित दुनिया में आने के लिए, क्योंकि पतितों को पावन बनाना है। तो तुमको क्या करना है? नहीं, यहाँ बात चल रही है उसके प्रसंग की बात। तुमको किसको देखना है? पतित को देखना है या पतित में पावन को देखना है? तो जिनकी बुद्धि में यही घर्रौटा चला रहता है कि ये क्या करता है, इसकी क्या चलन है, मन परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है उसके बारे में चिंतन करेंगे और परमात्मा चिंतन उनका नहीं चलेगा। अरे हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, शंकर अलग और शिव अलग। तुम्हें किसको याद करने से प्राप्ति होगी? शिव बाप वर्षा देने वाला है, ये तो कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा या विष्णु या शंकर वर्षा देने वाले। शंकर से क्या मिलेगा? शंकर के लिए तो बताई दिया हज्जाम है, क्या करेगा? तुम्हारा माथा मुड़ लेगा। उसको याद करने से ये वर्षा मिलेगा। माथा जो भारी हो जाता है ना, बाल बढ़ जाते हैं, तो माथा मुड़ देता है तो क्या हो जाता है? माथा हल्का हो जाएगा। तो सूरदास की कथा है जो बैठ सुनाते हैं, बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। तो जो आंखें हैं उन आंखों से हमें देखने की बात नहीं है परमात्मा को। परमात्मा को किन आंखों से देखा जाता है? ज्ञान की दिव्य दृष्टि से हम परमात्मा को देख सकते हैं, दिव्य चक्षु से, बुद्धि की आंख से देख सकते हैं। बाकी इन आंखों से न तो आत्मा का पार्ट पता चलेगा और न परमात्मा का असली पार्ट पता चल सकता है। तीसरा पीठ, जो पतित बने हैं उन्हों को ही मुझे आकर पावन बनाना है। आता किस लिए? पतितों को पावन बनाने। और सबसे पहले आता किसने है? सबसे पहले मिलता किसको है? पतित को ही मिलता है। तो वो पतित को आकर के पावन बनाता है और पहले पहले पतित में आता है। तो एम आद्यक भी हमको परमात्मा का पता है और उसके आने का तरीका भी पता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मनुष्य तो क्या क्या बकते रहते हैं। क्या बकते रहते हैं? बकना मन, एक मुरली में बोला है, कलंकी धर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। वो कलंक धारण करने वाला पार्ट है, खुशी खुशी कलंक धारण कर लेता आया है कितना श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, पतितों को मूत पलितियों को साफ करने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, गंदे वस्त्र धोता है। तो ये गंदा काम हो गया क्या है? काम तो बहुत अच्छा है अगर गंदे कपड़े बने रहे। ये सफाई करने वाले अगर सफाई ना करें तो मनुष्यों का क्या हाल हो जाए? बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो मनुष्य देखो क्या क्या बकते रहते हैं। समझा ही नहीं है तो जरूर वो अपने बातें बनाते रहेंगे। क्या नहीं समझा है कि परमात्मा पार्ट क्या है,
जिस शिवलिंग को कोई बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा बनाते हैं, यादगार मंदिर तो बनाए हुए हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उसका एक्ट, उसका ऑक्यूपेशन, उसका धंधा, उसका धंधा नहीं जानते। व्यास भगवान के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई, वाह, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। गीता किसने सुनाई है? गीता तो वास्तव में भगवान ने सुनाई। गीता माना गीत, महिमा, तो गीता माता की महिमा। गीता माता तो पवित्र है ना, और धर्म शास्त्रों के मुकाबले गीता माता तो बहुत पवित्र है, उसकी महिमा बाप बैठ करते हैं। गीता पति भगवान कहा जाता है। गीता के रोम रोम को जानने वाला कौन होगा बच्चा? गीतापति भगवान ही जानेगा। तो कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, पुनर्जन्म तो जरूर लेगा। कौन? कृष्ण। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा की सोल जन्मन के चक्र में जरूर आती है जब तक जन्म न ले। जन्म मन का चक्र एक होता है हृदय का और एक होता है बेहद का। बेहद का जन्म मन का चक्र का मतलब है कि निश्चय हुआ माना आत्मा ने जन्म लिया, और अनिश्चय हुआ माना मृत्यु को पाया। तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में कृष्ण बच्चे की आत्मा जाति भ्रमण करती है, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। कृष्ण तो बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। तो कृष्ण वाली सोल संगमयुग में बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है, इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि इन ब्रह्मा का नाम शिव बाबा आके रखते हैं बेबी। बेबी माना बच्चा बुद्धि। ज्ञान की बातें तो भले उसे मोतन के द्वारा सुनाई, लेकिन उन बातों की गहराई का वो ज्ञाता नहीं है। कौन? ब्रह्मा। तो कृष्ण तो जरूर पुनर्जन्म लेगा, पुनर्जन्म को मानते भी हैं, 84 जन्म लेते हैं। कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी तो लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। डायनेस्टी माना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो वंश परंपरा चलती है राजाओं की, वो हो गई राजाई की डायनेस्टी। तो कृष्ण की डायनेस्टी नहीं है, कृष्ण तो प्रिंस है, कोई राजा थोड़े ही है। कृष्ण सतयुग में पैदा होगा किस रूप में? बच्चे के रूप में पैदा होगा। तो बच्चे की राजाई होती है क्या? राजाई किसकी होती है? बाप की। तो कृष्ण बच्चे को जो जन्म देने वाला है सतयुग में, उसी की डायनेस्टी है। संगम भी नारायण, राधे कृष्ण तो अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग राजाई के थे। कौन से राधे कृष्ण की बात है? सतयुग के। सतयुग के राधा कृष्ण तो सात सात जन्म लेते हैं, 21 जन्म सदा साथ होता रहता है, उनके तो अलग होने की बात ही नहीं है। ये तो संगम युगी राधा कृष्ण की बात है कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो जरूर कोई सूर्य भी होगा, कोई चंद्रमा भी होगा जिनका वंश चला होगा। ऐसे तो नहीं है कि रघु राजा हुआ न हो, रघुवंश चल पड़ा हो। वंश किसके आधार पर चलता है? कोई हुआ है ना, तो उसके नाम पर वो वंश चलता है। तो परमात्मा भी जब आता है तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको देता है? और भक्ति मार्ग की गीता में भी ये लिखा हुआ है, ज्ञान मार्ग में तो और जल्दी समझ लेना चाहिए। ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को सुनाया। कहते हैं सूर्य देवता है नमा, चंद्र देवता है नमा। तो देवता क्यों कहते हैं? सूर्य भगवान हुआ या देवता हुआ? जरूर देवता हैं ये दोनों, सूर्य और चंद्र। उनको ज्ञान देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल। तो वह सुप्रीम सोल जो ज्ञान सूर्य है, जो सारी दुनिया को रोशनी देने वाला है, चंद्रमा को भी यज्ञ के आदि में उसी के द्वारा रोशनी मिली। ज्ञान चंद्रमा कौन? ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ज्ञान सितारे ये सब हैं रोशनी लेने वाले और साकार में रोशनी देने वाला ज्ञान सूर्य। तो उस ज्ञान सूर्य का जो पार्ट प्रत्यक्ष होता है उसके बच्चे हैं सूर्यवंशी, और ज्ञान चंद्रमा का जो शीतल पार्ट प्रत्यक्ष होता है उस शीतल पार्ट को ही रिगार्ड देने वाले और मानने वाले, विशेष मान्यता देने वाले वो कौन वंशी हुए? चंद्रवंशी। और सूर्य को विशेष रिगार्ड देने वाले सूर्यवंशी हुए। तो राधा कृष्ण अलग अलग रहते हैं, राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। इसलिए कृष्ण की महिमा गाते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर उन्हों की डायनेस्टी गाई जाती है। संपत्ति भी उनसे कहा जाएगा, किन से? राधा कृष्ण के माता पिता जो लक्ष्मी नारायण हैं, सूर्यवंशी, तो उनसे कहा जाएगा संपत्ति। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं 1250 वर्ष सत्यु की आयु है, फिर लाखों वर्ष क्यों कह दी? हैं? शास्त्रों में बातें झूठी हैं क्या? क्योंकि शूटिंग के समय का हिसाब है, जिनकी बुद्धि में ये शूटिंग के समय का हिसाब नहीं बैठा है वो इस राज को नहीं जान सकते। शूटिंग पीरियड में जब सत्यु की शूटिंग होती है तो लंबा समय चला जाता है, पहले सीन की शूटिंग में जरूर ज्यादा टाइम लगेगा और बाद के जो दृश्य हैं उन्हें दिखाने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है संदेश देने वालों का। तो सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसका मतलब सत्यु की शूटिंग में जरूर टाइम ज्यादा लगता है। बाप कहते हैं कि सत्यु की आयु 1250 वर्ष, तो भक्ति मार्ग की मान्यता में और सत्यु की मान्यता, वो ज्ञान मार्ग की मान्यता में रात दिन का फर्क हो जाता है। वास्तव में सत्यु कोई लाखों वर्ष का नहीं होता, चारों युगों की आयु बराबर होती है। ये तो संगम युगी राज बुद्धि में नहीं बैठा है तो इस राज को नहीं समझते। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। तो जब ब्रह्मा का दिन कहेंगे, ब्रह्मा की रात कहेंगे, तो ब्रह्मा और ब्राह्मण भी तो होने चाहिए ना। वो तो कह रहे थे सत्यु त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, वहां ब्रह्मा और ब्राह्मण होते हैं क्या? जब ब्रह्मा ब्राह्मण ही नहीं होते तो वहां की बात नहीं है। कहां की बात है? ये शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में जब साकार में ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष होता है, देखने में आता है, तो है ब्रह्मा का दिन, और जब आंखों से ओझल हो जाता साकार तो ब्रह्मा की रात। तो ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख। ज्ञान माना पहचान, ज्ञान माना समझ। तो अगर बाप की पहचान है तो सुख है, कि प्रैक्टिकल में बाप एक व्यापी होकर के आया हुआ है। और अगर ये पहचान नहीं है, जो गुरु सामने आया उसी को गुरु बना लिया, भगवान बना लिया, तो अज्ञानता के कारण क्या हुआ? ब्रह्मा की रात में चले जाते हैं। तो वही बाप पतित पावन है, याद करते करते तुम पावन बन जाओगे और अंत मृत्यु सोगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, अंत मृत्यु सोगति क्यों हो जाएगी? है क्योंकि बाप हमारी बुद्धि को ही आकर के चेंज करते हैं। बुद्धि में ज्ञान इतना तह तक बैठ जाता है कि भले सारी दुनिया में रक्त की नदियां बहेंगी और हमारी बुद्धि उस समय आनंद में रहेगी। इतना गहराई तक ज्ञान होगा तो अंत मत सुगत नरक की दुनिया में जो मरेंगे वो नरक में पैदा होंगे, और जिनकी आंखों में स्वर्ग समाया हुआ है स्वर्ग की स्मृति में मरेंगे तो स्वर्ग में पैदा होंगे। तो कहां की बात हुई? यहां की बात। तो याद दिलाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित तो हो, इसलिए वहां जाने के लायक नहीं हो। कहां? सत्युग में जाने के लायक नहीं हो, इसलिए अब तुम पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गार्ड है, एक ही बार आता है, और एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। कहते हैं स्वर्ग की दुनिया ऊपर और नरक नीचे पातालपुरी में, कोई कहते हैं 14 लोक हैं। तो जितनी जबान है उतनी बातें, यहाँ तो एक मत है अद्वैत मत, दूसरी मत यहाँ नहीं है। झाड़ में देखो कितनी मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया है, एक मत एक राज्य। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहूकार था,